कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotrasat, His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Gokula Nanda Ki Jai, Shri Shri Gauranitai Ki Jai, Shri Shri Jagannatha Baladeva Subhadra Mai Ki Jai, Shri Krishna Janmashtami Mahotsava Ki Jai, Nitai Gaura Premanande, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya, Naram Chaiva Narottamam, Devim Sarasvatim Vyasam, Tato Jayamudirayet, Nashta Prayeshva Bhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki. Om Ajnana Timiram Dasya Jnananjana Shalakaya Chakshuron Militam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा के सत्संग में अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह, इस विषय पर चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। कल तक हम ये सुन चुके हैं कि रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण दूत के द्वारा एक पत्र श्री कृष्ण को भेजा, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की बात व्यक्त की कि वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं और श्री कृष्ण कृपा करके उनकी इच्छा पूर्ण करे। वो यहाँ पर कुंडिनपुर या कौंडिन्यपुर में आके बलपूर्वक रुक्मिणी देवी को राक्षस विधि के अनुसार उठाकर ले जाए और विवाह कर ले, ताकि और कोई भी राजा जैसे शिशुपाल आदि हो वो उनका स्पर्श न कर पाए। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा या सुना तो तुरंत द्वारका से निकल पड़े। उस ब्राह्मण को लेकर एक रात्रि में वो कुंडिन या कौंडिन्यपुर के बाहर पहुंच गए। श्री रुक्मिणी देवी ने यह भी कहा था कि किस तरह से वो विवाह कर पाएंगे, श्री कृष्ण उनसे विवाह कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जब विवाह के पहले दिन, जैसे हमारे कुल में परंपरा है, हम अंबिका देवी के मंदिर की ओर जा रहे होंगे, तो उस समय श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर उन्हें उठा के रथ पे बिठाकर ले जा सकते हैं। तो जब रुक्मिणी देवी घर से बाहर निकली, अर्थात अपने राजमहल से, तो उस समय सारे उनके सैनिक आदि उनको घेरे हुए थे। ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी कि कोई ऐसे उनका अपहरण कर पाए। उधर जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन कुंडिन के निवासियों ने देखा तो बहुत ही हर्षित हो गए और वो आपस में चर्चा करने लगे कि वास्तव में रुक्मिणी देवी हमारे राजकुमारी का विवाह श्री कृष्ण से और केवल श्री कृष्ण से ही होना चाहिए, यही एकमात्र योग्य जोड़ी है। तो जब रुक्मिणी देवी घर से निकली तो पहले अपने पालकी में बैठकर आईं, जैसे कि एक राजकुमारी के लिए होता था। राजकुमारियां इत्यादि यूं ही सड़कों पर नहीं चलती थीं। तो राज वो पालकी में बैठ के आईं, परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब अंबिका देवी के मंदिर के निकट पहुंची, लगभग 12 से 15 कदम दूर, तो पालकी से उतरी। अब क्यों उतरी, पालकी लेकर पालकी में बैठकर ही क्यों नहीं गई? वैसे पुराणों में नियमावली का उल्लेख है, जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो कई विधि और निषेधों का पालन करना होता है। जैसे कि यहाँ मंदिर के अंदर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमें संसारी चीजों के बारे में भगवान के सामने बात नहीं करनी चाहिए, अशुद्ध अवस्था में यहाँ पर नहीं आना चाहिए और भगवान के सामने स्वयं अपनी प्रशंसा या किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि भगवान की प्रशंसा कर रहे हों और भगवान के महान भक्तों की प्रशंसा कर रहे हों तो फिर ठीक है, परंतु इनके अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कई नियम हैं, उनमें से एक नियम ये है कि पालकी में बैठकर मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारे जो भौतिक जगत की उपाधियां होती हैं, जितने भी पद आदि होते हैं, उनको बाहर छोड़ना चाहिए। हम कितने भी बड़े पद में स्थित क्यों न हो दुनिया में, परंतु जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो एक भक्त के भाव में आना चाहिए, विनम्र भाव से आना चाहिए। सबको बताइए कि उनको बात नहीं करें, वो चुपचाप दर्शन करके जाएं। जो स्वयं सेवक खड़े हैं कृपया दर्शनार्थियों से कहें कि वो बात नहीं करें, चुपचाप चले जाएं, ऐसे इशारा करके जाने दीजिए सबको। तो यहाँ जब मंदिर के अंदर आते हैं तो विनम्र भाव से आना चाहिए, भगवान के और भगवान के दास के रूप में आना चाहिए। इसलिए जूते चप्पल भी नहीं पहनते हैं, पालकी में तो नहीं आना चाहिए। इसलिए आजकल तो कोई पालकी में नहीं चलता, परंतु गाड़ी में तो चलते हैं। तो गाड़ियां जब भी आती हैं तो बिल्कुल मंदिर के द्वार के सामने ना होकर थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकनी चाहिए, फिर वहां से उतर के पैदल आना चाहिए, जूते चप्पल उचित स्थान पर रख के आना चाहिए। और एक बात है, आधुनिक काल के अनुसार ये भी बताया जाए कि जूते चप्पल जो हैं, जो हमारे पादुकाएं होती हैं, इधर उधर न रख के जहाँ निर्धारित स्थान है वही रखना चाहिए, और वो भी सही ढंग से रखना चाहिए। तो खैर, रुक्मिणी देवी वैदिक सभ्यता के इन नियमों से भली भांति परिचित थी, तो पालकी से नीचे उतरी और फिर पैदल चलने लगी, और फिर वो अंदर आ गईं अंबिका देवी के मंदिर में। उस समय उनके साथ में उनके कई सहेलियां थीं और वरिष्ठ ब्राह्मणों की पत्नियां भी थीं, और साथ साथ उनके कई सैनिक भी थे जो उनको घेर के खड़े हुए थे ताकि कोई आक्रमण न करे। वहां पर जो ब्राह्मणियां थीं वो सुंदर गीत गा रही थीं, मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं इत्यादि। और जैसे ही रुक्मिणी देवी मंदिर के द्वार में पहुंची, सब सर्वप्रथम उन्होंने अपने चरण कमलों को और अपने कर कमलों को धोया, आचमन किया और मन में शांति का अनुभव करके मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुई। तो जो ब्राह्मणियां थी उन्होंने रुक्मिणी देवी को साथ में ले जाकर अंबिका देवी के सामने प्रस्तुत किया। वहां पर रुक्मिणी देवी ने प्रणाम किया अंबिका देवी को और फिर एक प्रार्थना की। 46 नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तद् अनुमोदताम्। इस एक श्लोक में रुक्मिणी देवी अंबिका देवी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? नमस्ये त्वा अंबिके, कि हे अंबिके आपके चरणों में नमन है और सतत प्रणाम करती हूं मैं, स्व संतान और आपके साथ साथ स्व संतान युताम शिवाम, आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आपके साथ साथ आपके जो संतान हैं, अंबिका देवी के संतान कौन हैं? गणेश जी हैं, स्कंद जी हैं, कार्तिकेय इत्यादि, तो उनको भी नमन करती हूँ, साथ साथ युताम शिवाम आपके पति शिव जी को भी नमन करती हूँ। तो क्या प्रार्थना थी रुक्मिणी देवी की? भूयात, वो हो जाएं। कौन हो जाएं? भगवान कृष्णस, कृष्ण कि भगवान कृष्ण पति ही में मेरे पति बन जाए। तद अनुमोदताम, ऐसे कृपया होने दीजिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं, ऐसे रुक्मिणी देवी प्रार्थना कर रही हैं अंबिका देवी के सामने। अपने मन ही मन में प्रार्थना कर रही होंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही गोपनीय बात थी, किसी को पता नहीं था। यदि ऊंचे स्वर में रुक्मिणी देवी ने ये बात कह दी होती तो वहाँ हंगामा हो चुका हो गया होता, क्योंकि वहाँ पे पास में राजा सब मंदिर के बाहर भी खड़े थे, शिशुपाल आदि। तो अपने मन ही मन में हो सकता है रुक्मिणी देवी ने प्रार्थना की। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वृंदावन के गोपियों ने भी इसी प्रकार से दुर्गा देवी या कात्यायनी के मंदिर में जाके ये प्रार्थना की कि हम श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं। और जब गोपियां बहुत छोटी भी थीं, उस समय से वो ऐसे प्रार्थना कर रही थीं, इसलिए चीरहरण लीला हुई। कई लोग इसका तात्पर्य नहीं जानते हैं। जब गोपियां वहां यमुना में स्नान कर रही थी, बहुत छोटी बच्चियां थी वो उस समय, तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को चोरी कर लिए। तो इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने ही कात्यायनी देवी के सामने जाके इच्छा व्यक्त की थी कि हमें श्री कृष्ण हमारे पति बने, तो उनकी इच्छा ऐसे पूर्ण कर दी। तो दुर्गा देवी के पास जाना है तो संसार की किसी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम नमन कर सकते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, कृष्ण हमारे स्वामी बन जाएं, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। फिर रुक्मिणी देवी ने जल, गंध, अक्षता, धूप, वस्त्र, फूल, रत्नों की मालाएं और प्रदीपावली और तरह तरह के व्यंजन अर्पण किए, और साथ साथ में आरती वगैरह भी हुई। और आगे चल के फिर वहाँ प्रसाद का वितरण भी हुआ। उस समय रुक्मिणी देवी ने अपना मौन व्रत छोड़ दिया। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो प्रार्थना उन्होंने की वो अपने मन में ही की होगी, क्योंकि अब तक मौन व्रत धारण किया हुआ था। और फिर अपनी एक सहेली के हाथों को पकड़कर वो निकल पड़ी। और जैसे ही वो बाहर आई मंदिर के, तो सारे राजा जो शिशुपाल के मित्र थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे, और सब ने रुक्मिणी देवी को देखा। अब तक देख नहीं पाए थे क्योंकि वो पालकी में थी और पालकी से उतरकर वो मंदिर में गई थी, लेकिन अब मंदिर से जब बाहर आई तो सारे राजाओं ने रुक्मिणी देवी को देखा। ताम देव मायाम इव धीर मोहिनीम, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी को देखकर उनको ऐसे लगा कि ये साक्षात माया के रूप है, माया जैसी इतने ही ये मोहिनी है, मन को मोहित करने वाली ये है। इतने सुंदर दिख रही थी रुक्मिणी देवी कि ऐसा सौंदर्य बहुत धी पुरुषों का मन भी विचलित कर देता। तो वहां जितने भी राजा उपस्थित थे उनमें से तो कोई भक्त था नहीं, सारे असुरी वृत्ति के थे, तो वो इतने हक्का वक्का हो गए रुक्मिणी देवी को देखकर कि शुकदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं कि जो जिस स्थान में था वहां से वो गिर गया। कोई हाथी पे बैठा था, हाथी से ऊपर नीचे गिर गया। कोई घोड़े पे सवार था, घोड़े से नीचे गिर गया। कोई अपने रथ पे खड़ा था या बैठा था, रथ से नीचे गिर गया। तो इतने आश्चर्यचकित हो गए रुक्मिणी देवी का सौंदर्य देखकर ये सारे राजा, और बिल्कुल स्तब्ध हो गए। इतना ही नहीं कि वो गिर पड़े, उनके हाथों से जितने भी अस्त्र थे वो भी गिर पड़े और वो स्वयं भी गिर के बेहोश हो गए। ऐसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि राजाओं की दशा वहां पर क्या थी। तो उस समय धीरे धीरे जब रुक्मिणी देवी आगे बढ़ने लगी तो देख रही थी कि श्री कृष्ण कहाँ हैं कहाँ हैं। फिर अंततः उन्होंने श्री कृष्ण को देख लिया। श्री कृष्ण निकट थे और जल्दी से श्री कृष्ण अपने रथ के ऊपर आए और उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के दिव्य शरीर को उठा लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी ये बतलाते हैं कि रुक्मिणी देवी कोई साधारण महिला नहीं है, वो श्री कृष्ण की अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति हैं, साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। तो जिस प्रकार से कोई असुर वृत्ति का आदमी भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं हो सकता, कभी योग्य नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से ये जो राजा गण थे वो रुक्मिणी देवी का स्पर्श करने की बात तो दूर है, उनका दर्शन करने के लिए भी योग्य नहीं थे। तो बहुत एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं आचार्यगण। वो कहते हैं कि जिस रूप का दर्शन इन राजाओं ने देखा, वो किया, वो रूप रुक्मिणी देवी जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उनका नहीं, पर उनका एक माया का रूप जो प्रकट करवाया रुक्मिणी देवी ने, उसे देखा। क्योंकि ऐसे असुरी वृत्ति के राजा जो है उनका उनकी जो पात्रता नहीं है कि वो रुक्मिणी देवी का दर्शन भी कर सके, स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर की रही। जैसे हम जानते हैं कि सीता देवी का अपहरण वास्तव में रावण ने नहीं किया, सीता देवी का एक माया रूप था, माया सीता का अपहरण किया। इस प्रकार से जिस रूप को रुक्मिणी देवी का रूप का दर्शन राजाओं ने देखा वो उनका एक माया रूप था। तो खैर, फिर रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, वो तो अपने रथ पे सवार थे और रथ के ऊपर सुपर्ण लक्षणम, सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी, जैसे अर्जुन के रथ के ऊपर युद्ध में ध्वज के ऊपर कौन थे, हनुमान जी थे, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के रथ के ऊपर जो ध्वज था उसके ऊपर कौन थे, गरुड़ जी, इसलिए सुपर्ण लक्षणम। तो समारोप्य, तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को आसानी से उठा लिया और रथ में स्थित कर लिया। और वहां पर जितने भी राजा इकट्ठे हुए थे, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र इत्यादि, उनको पीछे कर लिया बड़े आसानी से और निकल गए। निकलते निकलते उस समय बलराम भी वहां पर हाजिर थे, उपस्थित थे, तो वो आगे चले और श्री कृष्ण अपने रथ पे पीछे पीछे चले। और इस तरह से वहां प्रस्थान किया श्री कृष्ण ने अपने रथ में कि जैसे एक सिंह सियारों के बीच में से अपना जो भाग बलपूर्वक छीन के निकल जाता है और वो सियार जो है कुछ नहीं कर सकते, देखते हुए रह जाते हैं। तो इसी प्रकार ये इतनी जल्दी हो गई बात, इतनी शीघ्र कार्य कर लिया श्री कृष्ण ने और बलराम ने कि जितने भी राजा थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उनके आंखों के सामने से श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को उठाकर रथ में बिठाकर उनके सामने से निकल भी गए। और जैसे वो निकल गए, फिर जैसे उनके होश ठिकाने आ गए कि अरे एंद्रे क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने से ऐसे कैसे हो गया, तो जरासंध आदि कहने सोचने लगे कि वैसे भी तो वो बहुत घमंडी थे सारे राजागण, और अभी वो सोचने लगे कि अरे हमारे स्वाभिमान को कितनी चोट पहुंची है, यश क्षयम, हमारे यश का क्षय कर दिया है श्री कृष्ण ने। जरासंध मुख न से हिरे, जितने भी राजा गण थे वहां जरासंध आदि, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और फिर वो कहने लगे, क्या कहने लगे, अहो धिक अस्मान, कि हमारा धिक्कार हो हमारे यश के ऊपर, अहो धिक अस्मान यश आत्त धन्वनाम गोपैहि हृतम केशरीणाम मृगैर इव, कि हमारे यश का हमारे ऊपर धिक्कार हो। यद्यपि हम इतने बड़े योद्धा हैं, धनुर्धर हैं, फिर भी हमारे सामने हमारे यश को इसने हरण कर लिया है। कैसे? जैसे कि केशरीनाम मृगेर इव, जैसे समझ लीजिए कि कोई साधारण छोटे पशु आके सिंह के सामने से उसका भाग निकाल ले, ऐसे ये साधारण ग्वालों ने किया है। किसकी बात, किन की बात कर रहे थे? कृष्ण और बलराम। उनको जरासंध आदि कह रहे थे, ये तो ग्वाले हैं। इन साधारण ग्वालों ने, हम सब शेर जैसे, सिंह जैसे राजाओं के सामने से ऐसे रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया कि मानो कोई साधारण छोटे छोटे पशु हैं, जैसे हिरण आदि सिंह के भाग को उठा कर ले जाते हैं। वास्तव में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वो राजागणी छोटे छोटे पशु के समान थे और श्री कृष्ण सिंह के समान थे। परंतु देखिए, अहंकार और घमंड का ये लक्षण होता है कि व्यक्ति को अपने सपनों की दुनिया में स्थित कराता है। इसलिए जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? तो घमंड में व्यक्ति भूल जाता है, समझ नहीं सकता कि उसकी औकात क्या है, उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है। तो उसी प्रकार से ये राजागण घमंड के मारे अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, परंतु ऐसे घमंड को से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, भगवान और उनकी शक्तियां शीघ्र ही उनको सही जमीन पर ले आते हैं, मान को भंग करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर ढंग से देवराज इंद्र का मान भी भंग कर लिया, तो ऐसे छोटे मोटे जो राजा थे, जरासंध, शिशुपाल, इनका क्या कहना। फिर इसके साथ ये अध्याय संख्या 54 प्रारंभ होता है, जिसमें विषय है कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह। तो ऐसे कह के ये सारे राजा थे, जरासंध आदि, उन्होंने अपने कवच आदि धारण कर लिए, पहन लिए, हाथों में अपने शस्त्र सब उठा लिए, रथ पे, घोड़े पे सब सवार हो गए और फिर उनकी सेनाएं जो हैं उनके साथ में चल पड़ी और उनका पीछा करने लगी। किनका? श्री कृष्ण और श्री बलराम के, और उनके साथ में उनके यदुकुल के जो योद्धा थे वो भी सब थे। तो जैसे ही यदुवंशियों ने देखा कि ये लोग पीछा कर रहे हैं हमारा, तो वो रुके, वो घूमे और सामना उन्होंने किया जरासंध आदि का, और ऐसे घमासान युद्ध वहां पर हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में ही वर्णन किया है कि कैसे यदुओं ने जितने भी इन राजाओं के सैनिक थे उनके गर्दन काट दिए अपने अस्त्रों से, अपने तीरों से, यहां तक उनके हाथी, घोड़े और जो रथ थे, सारथी थे, सब का विनाश कर दिया उन्होंने। और उधर रुक्मिणी देवी बहुत भयभीत हो गई, वो भी रथ के ऊपर थी और पीछे देख रही थी कि ऐसे घमासान युद्ध हो रहा है, तो बहुत भयभीत हो गई। तो अध्याय 5 श्लोक संख्या 5 नहीं है, अच्छा, डाउनलोड। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, प्रहस्य भगवान आह, तो भगवान ने जब देखा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया है कि अरे इतने सारे राजा आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध हो गया है पीछे, और वो लोग इतनी तेज गति से तीर आदि छोड़ रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराए, स्मित हास्य करके फिर कहने लगे, मास्म भैरवामलोचने विनंक्षति अधुना वैद अधुनै वैतत ताव कही शत्रवं बलम। वो कहने लगे कि मास्म भय हे वामलोचने कि हे वामलोचन हे रुक्मिणी देवी जिनकी आंखें बहुत सुंदर है मास्म भय हे डरो नहीं रुक्मिणी देवी विनंक्षति अधुन एव एतत विनष्ट होने वाले हैं अभी ही अधुन अभी अभी होने वाले हैं ये विनष्ट कौन ये सामने वाले यदु उनकी सेवाएं ये जो शत्रवम बलम ये शत्रुओं की सेनाएं जो हैं ये अभी अभी विनष्ट होने ही वाली हैं कौन नष्ट करेगा किनके द्वारा वह विनष्ट हो जाएंगी ताव कई ही आपके सेनाओं के द्वारा अब श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि मेरे सेनाओं के द्वारा क्योंकि अभी रुक्मिणी देवी तो उनकी पत्नी होने वाली है हो गई एक बार हाथ पकड़ लिया ऊपर कर लिया तो पत्नी हो गई तो अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके सेना के द्वारा ताव कई ही शात्रवम बलम विनंक्षति अधुना एव एतत तो बहुत जल्दी ही तुरंत इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपना स्नेह रुक्मिणी देवी के प्रति व्यक्त किया ये कहकर कि ये यादव यदुवंश भी आपका ही है अभी और ये सब अभी आपकी संपत्ति हो गई है जैसे जब कोई महिला विवाह करके घर में आती है तो घर की संपत्ति उसकी हो जाती है उसकी भी हो जाती है वास्तव में तो उसी प्रकार से जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को अपने रथ में बिठाया तो वो सारे दुनिया के लिए घोषित करना चाहते थे और खास करके रुक्मिणी देवी के लिए कि ये सब आपका है और एक बात इससे हम सीख सकते हैं कि जब हम श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण इतने आभारी और ऋणी हो जाते हैं इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका ऐश्वर्य वो बांट दें भक्तों के बीच में कि उनका भक्तों को भी अधिकार देते हैं उनके ऐश्वर्य का भोग करने के लिए जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बतलाते हैं जब कोई राजा का सेवक होता है वो भी राजमहल में ही रहता है राजा जो भोजन लेता है बचा वो भोजन वो भी राजा का भोजन है वो खा लेता है राजा के बचे हुए वस्त्र आदि वो भी सेवक को देता है तो राजा के वस्त्र भी सेवक पहन लेता है और पत्र के लिए पता क्या होता है राजमहल तो सेवक के नाम पे राजमहल में पत्र जाता है इसको कहते हैं सारष्टी तो भगवान के सेवक को भगवान के ऐश्वर्य ही प्राप्त हो जाते हैं भगवान का सानिध्य सामीप्य भी प्राप्त हो जाता है तो भगवान के निकट रह के जब वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान अपने ऐश्वर्यों का जो भोग करने का अवसर भक्तों को भी प्रदान कर देते हैं तो ऐसे जब युद्ध हो रहा था यदु सेना एक ओर श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे वो तो रुक्मिणी देवी को लेकर आराम से जा रहे थे रथ में वहां उनकी सेना युद्ध कर रही थी और ऐसा एक भयानक दृश्य वहां दिखाई पड़ा सारे जो गर्दन आदि सब कटे हुए थे सर थे इधर उधर गिरे हुए किसी सर के ऊपर कोई मुकुट था किसी के ऊपर कोई पगड़ी थी और कहीं ऐसे हाथ पांव शरीर के विविध अवयव जो हैं यहाँ वहाँ पड़े हुए थे एक भयंकर दृश्य था तो जब ऐसे घमासान युद्ध के बाद तहस नहस हो गया जरासंध और उनके साथियों की सेनाओं में तो डर के मारे फिर जरासंध और उनके साथी पीछे हट गए और पीछे हटने के बाद वो शिशुपाल के पास आए क्योंकि शिशुपाल तो बहुत उदास हो चुका था और उसका चेहरा जो है बिल्कुल सूख गया था और उसके चेहरे की कांति जो है वो भी पूरी तरह से अब चली गई थी जब व्यक्ति बहुत उदास और दुखी हो जाता है ना तो उसके शरीर का रंग आदि सब निकल जाता है तो ऐसे इतना उदास हो गया था शिशुपाल इतना विचलित हो गया था क्षुब्ध और व्याकुल हो गया था कि जरासंध ने आके अभी उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए कभी कभी असुरी वृत्ति के लोग भी होते हैं ना, वो भी पंडित होते हैं, उनको पुस्तकीय ज्ञान होता है। जैसे रावण भी, यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि रावण ने भी कई बार अच्छे अच्छे बड़े विद्वत्तापूर्ण प्रवचन दिए। जो भी उस प्रवचन में कहा उन्होंने, वो सब बिल्कुल सही था। इतना ही है कि स्वयं उस बात को नहीं मानते थे, वो बात अलग है, परंतु ऐसे प्रवचन देते थे। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने भी बहुत विद्वत्तापूर्ण एक प्रवचन दिया वहां पे, हिरण्याक्ष के पत्नियों को सांत्वना देने के लिए। तो ऐसे देखा जाता है कि असुरी वृत्ति के लोग भी ऐसे कभी कभी विद्वान होते हैं। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, जब तक हृदय कोमल नहीं हो जाता भगवान के भक्ति के द्वारा, तब तक ऐसा पुस्तकीय ज्ञान जो है ये व्यर्थ है। बल्कि कभी कभी ऐसा पुस्तकीय ज्ञान का परिणाम जो है वो विपरीत हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो खैर वो कहने लगे, भो भो पुरुष शार्दूल, कि हे मनुष्यों में से शेर शिशुपाल, उदासी उदास नहीं होना। देखो यहां संसार में दुख और सुख स्थाई नहीं है, स्थिर नहीं रहता। भगवद गीता बोल रहे हैं ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इत्यादि, तो वही बात बोल रहे हैं कि देखो संसार में जो है यहां कोई भी परिस्थिति स्थाई नहीं होती है, सुख दुख भी टिकता नहीं है, इसलिए ज्यादा उदास नहीं होना। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति कठपुतली को चलाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के हाथों में यहां सब कुछ नियंत्रित है। इसलिए जो व्यक्ति है कभी कभी उसे सुख का सामना करना पड़ता है, कभी दुख का सामना। और फिर जरासंध अपना उदाहरण देते हैं, देखो शिशुपाल मेरे जीवन में क्या हुआ, 17 बार मैंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया और मैं हार गया, परंतु मैंने हौसला नहीं खोया। 18वें बार मैंने जीत प्राप्त कर ली, इसलिए देखो हौसला नहीं खोना। तो फिर 18वें बार मैंने श्री कृष्ण को हरा लिया, और इसलिए तथाप्यहम न शोचामि न प्रहरिष्यामि कर्हिचित, इसलिए न कभी मैं दुखी होता हूं न कभी मैं सुखी होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब कुछ इस संसार में काल और भाग्य के द्वारा संचालित है। तो कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं जरासंध के लिए, अब किस हद तक इन शब्दों का अमल वो स्वयं अपने जीवन में कर रहे थे वो दूसरी बात है। तो खैर अभी ये काल शब्द का क्या है, जब ऐसे हम बार बार पढ़ते हैं शास्त्रों में कि संसार में सब कुछ काल द्वारा संचालित है, तो काल का अर्थ केवल ये नहीं है कि अभी 8 बजे फिर 8:30 बज जाएंगे फिर 9 बज जाएंगे। हाँ अवश्य काल तो चल रहा, काल का प्रवाह एक नदी की तरह तो चल रहा है, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि काल के द्वारा हमारे पूर्व कृत कर्मों के फल हमें मिलते रहते हैं एक के बाद एक, कभी कभी कई कर्मों के फल एक साथ में मिलते हैं, कभी कभी एक कर्म का फल जो है वो लंबे समय तक खींचता रहता है, वो फल समय समय पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा भाग्य हमारा पीछा कर रहा है, हमारे कर्म ही जिम्मेदार हैं हमारे सुख और दुख के लिए। तो काल और कर्म, काल और भाग्य, इन दोनों के कारण ये सारी दुनिया चलती है। तो इसलिए अभी आज हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, हमारी बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, हम श्री कृष्ण के सेना के सामने हार गए हैं, परंतु आगे चल के हमारी जीत होगी। आज काल उनके पक्ष में है, कल काल हमारे पक्ष में होगा। उनका विजय आज हुआ क्योंकि काल उनके पक्ष में था, जब काल हमारे पक्ष में आएगा तब हमारा विजय होगा। इस प्रकार से जरासंध ने शिशुपाल को सांत्वना देने का प्रयास किया और इस प्रकार से फिर कौंडिन्यपुर या कुंडिन को छोड़कर ये सारे राजा अपने अपने राजधानी में चले गए। जितने भी उनके सैनिक बचे थे वो भी उनके साथ में निकल पड़े। ये राजा लोग तो चले गए, परंतु वहां रह गए कौन? रुक्मी, क्योंकि रुक्मी तो कुंडिनपुर में ही रहता था और उस समय रुक्मी के हृदय में इतनी ईर्ष्या थी, इतना क्रोध था, इतना द्वेष था श्री कृष्ण के प्रति, और आज इतना बड़ा अपमान हो गया रुक्मी का और उनके सारे मित्रों का, उनके सारे परिवार का। ऐसा रुक्मी सोच रहा था कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। तो रुक्मी ने सोचा कि मैं अभी मेरी बहन को लेकर आऊंगा और श्री कृष्ण को मैं सबक सिखाऊंगा। इस तरह बहुत ही हताश और क्रोधित होकर रुक्मी ने अपने कवच आदि धारण कर लिए, अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में ले लिए और वचन दिया सारे राजाओं के सामने। इसके पहले कि राजा वहां से निकल जाएं, रुक्मी ने एक वचन लिया। क्या वचन लिया? अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीमिवः। वो कहने लगे कुंडिनम अर्थात कुंडिनपुर में, कौंडिन्यपुर में न प्रवेश्यामि, मैं प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि अहत्वा समरे कृष्णम, जब तक कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मार नहीं डालता। अप्रत्युह च रुक्मिणीम, और जब तक मैं रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता तब तक मैं कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा एक व्रत रुक्मी लेता है सारे राजाओं के सामने। राजा लोग तो चले जाते हैं क्योंकि वो तो हार गए हैं श्री कृष्ण के सेनाओं के सामने। अब रुक्मी अपनी सेनाओं को साथ में लेकर निकल पड़ता है और फिर अपने सारथी से कहता है जल्दी से उस स्थान में जाओ जहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी हैं और मुझे युद्ध करना है उनके साथ। और फिर जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आदि होती है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या बोलता है। कभी कभी हमें भी शायद अनुभव हो सकता है, जब ऐसे कुछ गुस्सा आ जाता है, हम कुछ कह देते हैं, बाद में पछताते हैं, सोचते हैं कि मेरे मुख से ये शब्द निकले कैसे। तो ऐसी अवस्था में रुक्मी को पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है। जैसे एक पागल व्यक्ति कभी कभी बड़बड़ाता है तो रुक्मी भी ऐसे बोलने लगा, अद्याहम निशितैर बाणैर गोपालस्य सुदुर्मतेः। अद्य अहम, अद्य मतलब आज, अहम मैं, निशितैः ही बाणैः ही, मेरे तीव्र या तेज बाणों से और नेश्ये वीर्य मदम येना न इश्य मतलब मैं दूर कर दूंगा कृष्ण को, किसको? गोपालस्य सुदुर्मते है, ये जो ग्वाला है कृष्ण, इसको मैं दूर उसको हटा दूंगा, इसकी मृत्यु करा दूंगा। और वीर्य मदम, उसको अपने वीरता का बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए स्वासा में प्रसभम रहता, इसलिए उसने अब मेरी बहन को उठाकर अपहरण करके वो ले गया है। इस प्रकार से रुक्मी जो है वो डींग मारने लगा। हम देखते हैं कि क्षत्रियों में कभी कभी ऐसे डींग मारने की प्रथा होती थी, खास करके युद्ध भूमि में भी, क्योंकि ऐसे डींग मारना मतलब अपने आप का, अपने बड़प्पन की घोषणा करना, मैं ऐसे कर सकता हूं इत्यादि। तो ये एक रजोगुण का लक्षण होता है। तो जो राजा आदि होते थे पहले, उनमें रजोगुण बहुत होता था, तो रजोगुण के कारण वो इस तरह से बातें करते थे। और युद्ध के पहले भी एक दूसरे को बहुत ललकारते थे कि आज तुम्हें मैं यमराज के दरबार में भेज दूंगा, मेरी शूरवीरता का सामना तुम आज तक नहीं कर चुके हो, ऐसे अपने बारे में कुछ बोलेंगे और सामने वाले की निंदा करेंगे। तो इस प्रकार से रुक्मी भी डींग कर रहा था, डींग मार रहा था। तो वहाँ वो तो उसे तो नहीं पता था, कुमति ही स्वयं रुक्मी कुमति था, सुमति नहीं। मति अर्थात बुद्धि या चेतना, सुमति अर्थात जिसकी बुद्धि है, जिसकी मति, जिसकी चेतना अच्छी है, शुद्ध है, भक्तिमय है। और कुमति, कुमति अर्थात जिसकी मति, जिसकी बुद्धि दुष्ट है। तो विकथमान है कुमति ही ईश्वरस्य अप्रमाण विट, विकथमान अर्थात डींग मारना। ऐसे कुमति वाला जो रुक्मी है, डींग मारते मारते वो ये नहीं जान पाया कि ईश्वर का प्रमाण क्या है या परिमाण क्या है। तो यहां शब्दों का प्रयोग किया गया है अप्रमाण विट। वो ये नहीं समझ पाया कि श्री कृष्ण को नापना, उनका माप लेना या उनका उनकी शक्ति की सीमा समझना ये संभव नहीं है। तो फिर क्या किया, वो सीधे आए और पीछे से श्री कृष्ण को बोलने लगे, तिष्ठ तिष्ठ, खड़े रहो खड़े रहो और युद्ध करो मेरे साथ। इस प्रकार से ललकारा युद्ध में रुक्मी ने श्री कृष्ण को। तो रुक्मिणी ने अपने धनुष को लिया और श्री कृष्ण की ओर तीन तीर छोड़े और कहने लगा, च अत्र क्षणम तिष्ठ यदुनाम कुल पामसना, एक क्षण के लिए खड़े रहो वहां पे हे यदुकुल को दूषित करने वाले कृष्ण, अब मैं तुम्हारे ऊपर तीर छोड़ने वाला हूं। तो और तीर छोड़ लिए और जहां भी तुम जाओगे हे कृष्ण, मेरी बहन को लेकर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और इस प्रकार से तुम्हारे अभिमान को मैं नष्ट करूंगा कि हे मूर्ख, हे कपटी, हे धोखेबाज, इस प्रकार से नाना प्रकार के अपशब्द रुक्मी कहने लगा श्री कृष्ण के बारे में। तो श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए और श्री कृष्ण ने फिर अपने धनुष को लिया और धनुष से फिर तीर छोड़े और आठ तीरों से उन्होंने रुक्मी के चार घोड़ों की को मार दिया, उसके सारथी को दो तीरों से, उस रथ के ध्वज को तोड़ दिया तीन तीरों से। फिर रुक्मी ने और एक धनुष लिया, उसे भी तोड़ दिया श्री कृष्ण ने। रुक्मी ने तीसरा धनुष उठाया, उसको भी तोड़ दिया श्री कृष्ण ने। फिर रुक्मी ने एक के बाद एक विविध प्रकार के अस्त्रों को हाथ में लिया और श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ा आक्रमणात्मक भाव में, और श्री कृष्ण ने इन सारे अस्त्रों को चूर चूर कर दिया अपने तीरों से। और फिर रुक्मी अपने रथ से कूद पड़ा हाथ में तलवार लेकर, श्री कृष्ण ने अपने तीर से उस तलवार को भी चूर चूर कर दिया। और फिर श्री कृष्ण ने रुक्मी की हत्या करना चाहा। उस समय रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी और कहने लगी, हे योगेश्वर, हे देवदेव, हे जगतपति, हे अप्रमेय आत्मन, हन्तुम न अर्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज, कृपया मेरे भ्रातर मेरे भाई की हत्या न कीजिए। हन्तुम न अर्हसि, हे कल्याण, हे मंगलमय श्री कृष्ण, हे महाभुजाओं वाले कृष्ण, कृपया मेरे भाई की हत्या मत कीजिए। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी का भाव क्या है, रुक्मिणी इतनी दुखी हो गई हैं, तो फिर उन्होंने रुक्मी की हत्या नहीं की। उधर रुक्मिणी देवी का मुंह सूख गया था, भय के मारे कि मेरी भाई की हत्या कहीं ना हो जाए। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी देवी रुक्मी को एक कपड़े से बांध दिया, गिरफ्तार कर दिया और श्री कृष्ण ने अपने तलवार से अपमानित किया रुक्मी को। कैसे, थोड़े से बाल जो है शरीर से और सर से काट दिए और थोड़ी सी मूछ भी काट दी, आधे मूछ काट दी आधे बाल सर के काट दिए। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा अपमान हो गया। और तब तक यदुवंशियों ने तो सारे दूसरी सेनाओं को तो विध्वंस कर ही दिया था। जब वो वहां पर आए यदुवंशी और उन्होंने देखा कि रुक्मी की क्या दशा थी, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अपमान से भला है मृत्यु। तो इसलिए रुक्मी की क्या दशा थी जब यदुओं ने देखा, तो उधर बलराम जी के हृदय में थोड़ी करुणा आई और उन्होंने फिर रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी को छोड़कर फिर कहने लगे, हे कृष्ण तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसा कार्य करने से हमारे भले नाम के ऊपर कलंक आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो निकट के एक रिश्तेदार हैं उनको अपमानित करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप उसकी मूछ आधे काट रहे हो, उसके बाल काट रहे हो, तो ये उसको मारने के बराबर हो गया। और फिर बलराम जी रुक्मिणी की ओर देखकर कहने लगे कि हे साध्वी, कृपया हम पर अप्रसन्न न होइए, क्योंकि आपके भाई का ऐसे विकृत रूप आज हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार होता है, तो रुक्मी ने भी ऐसे कार्य किया इसलिए उसको ऐसा फल मिला। फिर ऐसे बलराम जी कभी श्री कृष्ण से कुछ कहते, फिर रुक्मिणी देवी को सांत्वना दे के कुछ कहते। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत गया और फिर आगे चल के रुक्मिणी देवी को और श्री कृष्ण को बलराम जो है वो आध्यात्मिक उपदेश देने लगे। जैसे उपदेश सुना रुक्मिणी देवी ने तो उनका मन भी शांत हो गया। और फिर रुक्मिणी देवी की जो उदासी थी वो कम हो गई और आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक ज्ञान से रुक्मिणी देवी ने अपनी बुद्धि को स्थिर कर दिया। उधर रुक्मी को ये अपमान सहन नहीं हुआ। रुक्मी ने ही तो व्रत लिया था ना, वचन दिया था कि जब तक मैं श्री कृष्ण को मारूंगा नहीं और मैं रुक्मिणी को वापस नहीं ले आऊंगा, मैं कुंडिन या कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब नहीं कर पाए तो इसलिए उसी स्थान में एक शहर का निर्माण किया रुक्मी ने, जिस शहर का नाम हुआ भोजकट, और वहीं पे रुक्मी रहा। उस दिन के बाद रुक्मी कौंडिन्यपुर नहीं गया। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने फिर रुक्मिणी देवी को रथ में सवार करके वो निकल पड़े कौंडिन्यपुर से। चलते चलते वो द्वारका में आए। द्वारका में आके बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव की जय। उधर जो द्वारका के निवासी थे वो तो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, हर्षित हो गए थे और वहां खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि द्वारका वासियों के जीवन के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण ही थे और सारे वहां के नर नारी द्वारका के सड़कों पर निकल पड़े। सब नए नए वस्त्र धारण करके, सब अच्छे अच्छे आभूषण आदि से अलंकृत होकर सब बाहर आए और सारा शहर जो है वो सजा हुआ था। तरह तरह के तोरण, ध्वज, फूलों की मालाएं सब जगह थीं। सुगंध जल जो है छिड़काया हुआ था सारे सड़कों पे इत्यादि। और इस प्रकार से सारे द्वारका निवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। और जब उन्होंने कथा सुनी कि कैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ जीत लिया और उससे विवाह किया, तो सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। और इसके साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। इस साल के लिए ये कृष्ण कथा यहीं समाप्त करते हैं। और प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हो गया है और अगले साल आगे चल के फिर उनके पहले पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है प्रद्युम्न। और आगे चल के फिर श्री कृष्ण अन्य रानियों से विवाह करने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आगे विवाह के बाद रुक्मिणी देवी के साथ क्या हुआ, उन पुत्रों का नाम क्या था, और द्वारका में और कौन सी लीलाएं हुई, और किन के साथ फिर श्री कृष्ण का विवाह वहां पर हुआ द्वारका में, तो आपको अगले वर्ष श्री कृष्ण कथा के उत्सव में आना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक यहाँ दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज, वेदों में और उपनिषदों में ऐसा बताया गया कि कृष्ण थे फिर उन्होंने ब्लेजर को बढ़ने के लिए एक्सपैंड किया, तो शुरू में सब कृष्ण थे और बाकी जितने भी कृष्ण के हैं एक्सपेंशन है। और वहाँ बताते हैं जीव लोग के जीव और जो भी भगवान के एक्सपेंशन है सब भगवान के ही एक्सपेंशन है, स्वाम्स हो या विभिन्न नाम्स हो, तो उसका डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है जब दोनों भगवान के एक्सपेंशन है।
तो प्रश्न ये है कि उपनिषदों में ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया एको बहुस्याम, और फिर इन विस्तारों के साथ में प्रेम के संबंध स्थापित किए, प्रेम का आदान प्रदान किया और आनंद की वृद्धि हुई। तो अभी जितने भी भगवान के विस्तार हैं, जैसे उनके अवतार आदि हैं, वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं जिनको स्व अंश कहते हैं, स्वांश। और जो हम सब जीवात्माएं हैं हम भी उनके अंश हैं परंतु विभिन्न अंश हैं। तो इन दोनों में अंतर कैसा है, किस प्रकार का अंतर है? अंतर ये है कि जो उनके अवतार आदि हैं वो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के विस्तार हैं, या उनके विस्तारों के विस्तार हैं, या उनके विस्तारों के विस्तारों के विस्तार हैं। परंतु जो जीवात्माएं हैं वो विभिन्न अंश हैं, अर्थात वो उनके शक्ति के विस्तार हैं। उनकी जो आध्यात्मिक तटस्था शक्ति है, तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। परंतु जो अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के निजी शरीर के विस्तार हैं। ठीक है? शक्ति, उनकी शक्ति का विस्तार और स्वयं उनके विस्तार। तो उनके स्वयं के शरीर के जो विस्तार हैं वो है स्वांश अवतार, और जो उनके शक्ति के विस्तार हैं वो है विभिन्नांश। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कैसे विभिन्नांश का क्या शक्ति कैसे भिन्न हो सकती है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और उसको टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर बाद में उसको सुना जा सकता है। तो आवाज़ जो है मेरे से अलग हो गई, विभिन्न मेरी शक्ति है परंतु वो भिन्न हो गई मुझसे। तो जीवात्मा ऐसे हैं, यद्यपि जीवों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से सदैव बना रहता है, फिर भी जीव अपने आप को भिन्न समझने लगता है। तो शक्ति की भी श्रेणियां होती हैं, हम तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मिया और रुक्मिणी देवी, ये उनके अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं, और राम, नरसिंह इत्यादि ये श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के विस्तार है। ठीक है, स्पष्ट हुआ भी? और कोई प्रश्न? हाँ, माइक यहाँ पे दे दीजिए, माइक दे दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज, दलत प्रणाम महाराज। जब भगवान ने द्वारका बनाए थे तो समुद्र के बीचों बीच बनाया था, द्वारका नगरी,
द्वारका में,
हरे कृष्ण, समुद्र के बीचों बीच बनाया था द्वारका नगरी,
समुद्र के द्वार,
हरे कृष्णा। भगवान ने जब द्वारका बनाया तो समुद्र के बीच में बनाया, जैसे कि कोई भी अंदर नहीं जा सके, लेकिन जब बोले कि ब्राह्मण गए वहां पे खत लेके गए, तो कैसे अंदर गए, वो कैसे पहुंचे द्वारका नगरी?
जैसे एक द्वीप बना ना, एक द्वीप बना समुद्र में। हम आप में से कितने भक्त द्वारका गए हैं? तो बेट द्वारका में गए हैं ना, जहां वो महल है, आज भी है वो महल। तो समुद्र पार करके जाना पड़ता है, नौके में बैठकर जाना पड़ता है। तो उस समय भी ये ब्राह्मण नौके में बैठकर गए होंगे, और भगवान श्री कृष्ण को तो कोई नौके आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे।
कल के प्रवचन के बारे में मैं कल प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन आज पूछने को आपने बोल दिया। तो कल आपने कहा था कि भौतिक पुण्य जो है वो भौतिक पुण्य जैसा अंधों को मदद करना या के अनाथ आश्रम को देना, तो ऐसे भौतिक पुण्य अगर करे तो भक्ति नहीं मिलती। लेकिन तुकाराम महाराज जी ने गाथा में कहा है, जे का रंजले गांजले त्यासी ने जो आपुले तुलसी साधु ओळखावा देवत इसमें तुकाराम महाराज भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य इसकी बात वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जे का रंजले गांजले उनको जो मदद करता है वो साधु के समान होता है, साधु तो आध्यात्मिक है। तो तुकार महाराज जी का अगर आप भौतिक पुण्य भी करें वो भी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो
ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न, परंतु बीच बीच में आवाज कट रही है, तो स्पष्टता से ठीक है बैठ जाइए। देखिए, जैसे हम पहले कह रहे थे, भक्ति आध्यात्मिक है, भौतिक कार्य से आध्यात्मिक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, भौतिक चीज से भौतिक वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो उसके फल भी हमें मिलते हैं, परंतु वो फल भी भौतिक स्तर पे ही होते हैं। यदि हम कोई ऐसे भक्ति से जुड़े हुए पुण्य करते हैं, जैसे समझ लेना हमने प्रसाद का वितरण किया किसी भूखे आदमी को, भूखे आदमी को भोजन दिलाया परंतु कृष्ण का प्रसाद दिलाया, तो वो एक आध्यात्मिक पुण्य हो गया, वो भक्तिमय पुण्य हो गया। ठीक है, हमने किसी भक्त की सेवा की, तो इस तरह से जो कार्य भगवान के लिए हमने कोई वृक्षारोपण किया, भगवान के मंदिर के लिए, भगवान के बगीचे के लिए हमने वृक्षारोपण किया, भगवान के मंदिर के लिए हमने कोई कुआं खोद दिया, तो साधारणतः ये बाहर की दुनिया में किए जाएं तो ये साधारण पुण्य माने जाते हैं। परंतु जब वही कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए या उनके भक्तों के संबंध में किए जाते हैं तो फिर उनका एक स्वरूप आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु ये सिद्धांत आप याद रखिए, क्या है कि भक्ति केवल भक्ति से आ सकती है और किसी अन्य चीज से नहीं, भक्ति भक्तों से आ सकती है अन्यथा नहीं, और बाकी भौतिक पुण्य उससे अच्छा फल मिलेगा। भौतिक क्षेत्र में हम पाप करेंगे बुरा फल मिलेगा, तो पाप और पुण्य दोनों ही हमें संसार के चक्र में बांध के रखते हैं। परंतु भक्ति के कार्य करने से हम इस संसार के चक्र से छूट जाते हैं, ना हमें अच्छा फल मिलता है ना बुरा फल मिलता है इस भौतिक जगत में। हाँ, यदि हमने हमारी भक्ति अपूर्ण रखी, इस जीवन में हम परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए भक्ति में, तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो किसी धनवान परिवार में, धनी परिवार में हमें जन्म मिल सकता है जिसमें कि आगे चल के हम भक्ति जारी रख सकें। परंतु मुख्यतः भौतिक पुण्य के कार्य भौतिक पाप के कार्य के परिणाम भौतिक, भक्ति से भक्ति। तो यदि हमें भक्ति चाहिए तो केवल भक्तों के संग में आके ही वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब एक भजन गाएंगे। बात स्पष्ट हुई ना? ठीक, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे, रहे शोभे कनक कमल, आवृत कालिंदिनी रे राजहंस खेली करे, ताहे शोभे कनक कमल, तार मध्य हेम पीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य हेम पीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, তার মধ্যে রত্নাসন বসিয়াছেন দুই জনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। তার মধ্যে রত্নাসন বসিয়াছেন দুজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা। রূপ লাবণ্য রাশি আমিয়া পড়িছে খাসি হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে। রূপ লাবণ্য রাশি আমিয়া পড়ছে খাসি হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে। নরোত্তম দাস কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই স্ফুরুক মোর মনে। নরোত্তম দাস কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই স্ফুরুক মোর মনে। বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দির মনোহর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री वृंदावन धाम की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। तो इस साल की यानी कि 2023 साल की कृष्ण कथा में आप बड़े उत्साह से भाग लिए, इसके लिए आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आज इस कथा का अंतिम दिवस था, पिछले 6 दिनों से महाराज जी ने इतनी सुंदर कथा की, इसलिए महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया नीचे बैठे रहिए। जैसे आप जानते हैं कि कल हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव यहाँ पे इस मंदिर में मना रहे हैं, तो कल के कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। कल सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी, 5:15 से 7:30 तक यहाँ पे सब भक्त मिलकर हरि नाम का जप करेंगे, 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन और गुरु पूजा होगी और 8 बजे भागवत कथा, और कथा करेंगे परम पूज्य भक्त सामृत स्वामी महाराज। दिन भर यहाँ पे भजन और कीर्तन के कार्यक्रम मंदिर में होते रहेंगे। शाम के कार्यक्रम इस प्रकार से है, 6:00 से 7:00 तक दीक्षित प्रभु जी द्वारा भगवान के विग्रहों का यहाँ पे अभिषेक होगा, 7 से 8:30 तक जो डोनर भक्त है जिन्होंने जन्माष्टमी महोत्सव के लिए दान दिया है उनके द्वारा यहाँ पे भगवान के विग्रहों का अभिषेक होगा, 9:00 बजे नाट्य लीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर में ही होंगे, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक महाराज जी के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कथा होगी, और मध्य रात्रि 12:00 बजे आरती और सबके लिए महाप्रसादम का वितरण किया जाएगा। तो सभी कार्यक्रमों में आप बड़े उत्साह से भाग लीजिए। अन्य भी महत्वपूर्ण सूचना है कल के बारे में, कृपया ध्यान से सुनिए। जैसे आप देखते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमने आपको पिछले 2 दिन भी बताया था कि आप जब मंदिर में आएंगे, विशेषतः आज और कल, कृपया अपना वाहन शुक्रवार पेट के मेन रोड पे पार्क करें। आपका 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर,